बाबा की मुरली में कौन कौन सी बहुत सुंदर बातें थी बोलो विंदेश्वरी। हैं? प्रकृति को सत्व प्रधान बनाने के लिए उसे वाइब्रेशंस देने। और दलीप भाई बताओ कौन सी बात बहुत अच्छी थी, जोर से बोलना पड़ेगा, जरा पंखे भी चल रहे हैं। बाबा के बच्चे सेफ रहेंगे, चारों ओर आग लगेगी और बाबा के बच्चे सेफ, लेकिन कौन सेफ ये भी तो सोचना होगा ना। और सुनाओ, आगे सुनाओ पॉइंट। होली बीती सो बीती। हाँ प्रभा बहन, संस्कार मिलन की रास। और एक जन्म में 21 जन्म की प्राप्ति नहीं, कुछ और था। एक सेकंड और एक एक संकल्प, ये हमारे 21 जन्मों पर प्रभाव डालता है। ये बाबा ने अभी दूसरी बार कहा है, पीछे तो कहा था पूरे 84 जन्मों पर ही प्रभाव डालता है। इसी सीजन में दो बार ये बात आ गई, तुम्हारा एक एक सेकंड एक एक मिनट महान है। शुभ भावना शुभकामना बोलो हरगोविंद। उनके लिए शुभ भावना शुभकामना, प्रकृति के लिए भी शुभ भावना शुभकामना। शुभ भावना से क्या होगा? शुभ भावनाओं से हाँ परेशान आत्माओं के दुख दूर होंगे और दूसरों की बदले की भावना खत्म हो जाएगी। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, दूसरों की बदले की भावना खत्म हो जाएगी। बहुत अच्छा एक महावाक्य है बाबा का, उसको हम अब ध्यान से देखेंगे और उस पे अब के संदर्भ में वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तुम्हारी शुभ भावनाएं दूसरों के लिए छत्र छाया हैं। तो बाबा जो कह रहे हैं, सहारा दो दुखियों को, उनके दुख दूर करो, तो हमारी शुभ भावनाएं उनके लिए छत्र छाया बन जाएंगी। लेकिन शुभ भावनाएं भी हम किन स्वमान में स्थित होकर दें बोलो। मैं पूर्वज हूँ, इष्ट देव देवी हूँ, विश्व कल्याणकारी हूँ, तीन स्वमान विशेष। इससे हमारे शुभ संकल्प दूसरों के लिए छत्र छाया बन जाएंगे, बहुत मदद महसूस करेंगी दूसरी आत्माएं हमारी केवल शुभ भावनाओं से। जैसे भक्त मंदिर में गए हों और उन्हें महसूस होने लगे कि जो देवी है उसकी मेरे लिए बहुत शुभ भावना है, तो हम समझ सकते हैं क्या होगा, भक्तों को एकदम शांत हो जाएंगे, उनके बिगड़े हुए काम ही संवरने लगेंगे। तो एक पॉइंट ये हमें ख्याल रखनी है, शुभ कामना संकल्प करेंगे हम। शुभ कामना की क्या है कामना? इच्छा, शुभ इच्छा दूसरों के लिए, इनका चित्त शांत हो। हमें कोई आकर बताए कि ये बहुत उलझन में है, बहुत परेशान है, हम अपने स्वमान में स्थित होकर संकल्प करें इनका चित्त शांत हो, इनको सुख मिले, इनका कल्याण हो, ये आगे बढ़ें, ये निर्विघ्न हो, इन्हें सफलता प्राप्त हो। ये कामनाएं हैं हमारी, शुभ कामनाएं, ये दुआएं भी हैं। तो एक ये प्रैक्टिस हम करेंगे, प्रकृति के लिए क्या शुभ काम भावना रखेंगे। अब प्रकृति सतो प्रधान हो, शांत तो वो होगी नहीं। अगर हम संकल्प भी करें प्रकृति शांत हो जाओ कुछ न करो, तो ये तो अब संभव नहीं। ये हमारे सबके हाथ से निकल चुकी है, शिव बाबा के हाथ से भी निकल चुकी है ये बात, ठीक है ना? क्योंकि अब उसका समय बाबा ने कह दिया, मनुष्यों ने भी प्रकृति को बहुत तंग किया है, तो प्रकृति भी तंग कर रही है। देखो क्या क्या किया मनुष्य ने प्रकृति के तत्वों में, इम्बैलेंस तो है ही। उसका एक तत्व है जल, दूषित। दूसरा तत्व है वायु, दूषित। तीसरा तत्व है आकाश, संपूर्ण दूषित। चौथा तत्व है धरती, सब इम्बैलेंस। धरती का सारा जो श्रृंगार था, इसको लोग बोलते हैं धरती को नग्न कर दिया है, उसका सारा श्रृंगार समाप्त कर दिया है। तो ये सब गड़बड़ हो गई ना सारी, इसलिए उसका विस्फोटक होना बड़ा नेचुरल है। धरती के अंदर ही अग्नि भी बहुत है, अग्नि भी बैलेंस रखती है इस संसार में, सभी तत्वों में भी, सब जगह। ऐसा माना गया सब जगह अग्नि भी व्याप्त है, हर जगह है। ये भी बैलेंस रखती है, प्योरीफाई करती है। तो हम सभी प्रकृति को सतो प्रधान बनाने के लिए वाइब्रेशंस भी देंगे। बहुत सुंदर बात है जिस पर हमें अब ध्यान देना है। हमारा एक एक सेकंड, एक एक संकल्प सफल हो, इसके लिए मैं आपको कुछ संकल्प देता हूँ। पहले आप विचार करें, कौन मनुष्य समय को नष्ट नहीं करेगा? बहुत लोग समय नष्ट करते हैं और उन्हें पता नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि 5-7-10 घंटे रोज वेस्ट करने वालों को ये पता नहीं है कि उनका समय वेस्ट होता है। है या नहीं ये बात? व्यर्थ बातों में और चिंतन में, व्यर्थ विचारों में, तेरी मेरी में बहुत समय जाता है। किसी का समय जाता है काम थोड़ा लंबे समय में करेंगे। समय को कौन बचा सकते हैं? जिनका लक्ष्य महान हो, एक ही बात है बस। जिनका लक्ष्य महान नहीं है उन्हें तो पता भी नहीं चलता कि उनका समय वेस्ट हो रहा है। सवेरे उठते हैं, रात हो जाती है, अगर उनसे पूछो कुछ विशेष पुरुषार्थ हुआ है, वो भी उन्हें पता नहीं। कुछ हुआ है क्या, कोई परचिंतन हुआ है, वो भी उन्हें पता नहीं। 2-4 घंटे परचिंतन करने वालों को भी पता नहीं होता कि वो परचिंतन भी करते हैं। बातों में 2-4 घंटा लगाने वालों को भी बड़ा सुख महसूस होता है, उनको नहीं समझ में आता कि वो टाइम वेस्ट कर रहे हैं। क्या लक्ष्य हो महान? सोचो, अपने महान लक्ष्य के बारे में विचार करें। पहला लक्ष्य महान हो योग के बारे में। जिसको योग की चिंता है और जिसे मालूम है कि योग से स्थिति श्रेष्ठ होगी, न केवल विकर्म विनाश होंगे, योग से हमारी सेवाओं में बल भरेगा, योग से हमारा जीवन और सेवाएं निर्विघ्न होंगी, योग से हम विश्व को सकाश दे सकेंगे, योग से ही हमें सच्चा सुख मिलता है, आनंद आता है, जिसको ये लक्ष्य हो, पता हो इनका, वो समय को बचाएंगे और इस समय का सदुपयोग योग अभ्यास में करेंगे। बाबा ने कह दिया है, मन मना भव की स्थिति द्वारा ही समय और संकल्पों को सफल किया जा सकता है। मुरली में थी ये बात, इसलिए मुरली में थी ये बात, आपको ख्याल हो। मन मनाभव की स्थिति द्वारा दोनों को सफल किया जा सकता है। संकल्प, सब जानते हैं संकल्प की गति समय की गति से भी फास्ट है। कितने संकल्प चलते हैं सारा दिन, 60,000 एक दिन में, किसी के मन में उससे भी ज्यादा। इन्हें हम कम कर दें, पहला लक्ष्य होना चाहिए कुछ अभ्यास में रहकर संकल्पों की स्पीड को कम करना। दूसरी बात, बहुत गहराई से सब इस बात पे गौर करेंगे, मैं सुना दूं आप सुन लें ये नहीं, मेरे साथ सभी विचार करें, चिंतन करें, हमें वो संकल्प करने हैं जो हमें बहुत सुख दें। पहला विचार, हमें वे संकल्प करने हैं जो हमें बहुत सुख दें। बोलो हर गोविंद। दूसरा, हमें वे संकल्प करने हैं जिनसे विश्व का कल्याण हो। गहराई से सोचना है सबको, अपने को ये बातें जरा रिवाइज करानी है, रियलाइज करानी है, स्वीकार करानी है। कहने और सुनने से काम नहीं हो जाएगा, बिल्कुल डीप ले जाए इन्हें। हमें केवल वही सोचना है जिससे हमारी खुशी और नशा बढ़े, फायदा हो, तो ध्यान देंगे। इसके विपरीत, जो कुछ हम सोचते हैं उसके बारे में अब सोचें कि विपरीत जो हम सोच रहे हैं, जिससे हमारी शांति नष्ट हो रही है, जिससे हमारी चिंताएं बढ़ रही हैं, जिससे मन की परेशानियां बढ़ रही हैं, जो विचार टेंशन को बढ़ा रहे हैं, उन्हें करने से फायदा है? विचार करें सभी, फायदा है? कारण तो हैं टेंशन के, कारण हैं चिंताओं के, कारण हैं निराश होने के, कारण बहुत हैं। लेकिन अगर हम अच्छा चिंतन करेंगे तो वो सब बातें ठीक हो जाएंगी, चिंताएं भी ठीक हो जाएंगी। एक बहुत अच्छी बात जो मुझे बहुत प्रिय है और मैं क्लासेज में बहुत सुनाता हूँ, आपने सुनी है लेकिन वो भी बार बार सुनने की है, जिन चीजों पर हमारा अधिकार नहीं है, जिन्हें हम बदल नहीं सकते हैं, उन्हें स्वीकार कर लें। उन्हें स्वीकार करके अपने चित्त को शांत करें, ये अपने को ट्रेनिंग देनी है अब हमें। तो संकल्पों के बारे में विशेष रूप से जागृति रखनी है, हम वही सोचें जिससे दूसरों का भी भला हो, जिससे हमारे संबंध भी मधुर हो जाएं। सब अपने को पढ़ाएंगे, ट्रेनिंग देंगे, बाबा का स्वरूप हम सबने देखा, जापान के बात के बारे में सुनकर बाबा को कैसा लगता था, कैसा लगता था कि ये तो कुछ भी नहीं हुआ, अभी ये तो कुछ भी नहीं हुआ, अभी तो प्रकृति इससे बड़े बड़े रूप दिखाएगी, ये तो बहुत छोटा सा स्वरूप है उसका, सारी दुनिया खाली होने वाली है, होनी है ना। बाबा की मुरलियों में, साकार में हमने बहुत बार सुना है सबने, विनाश को देखना भी मासी का घर नहीं है, बहुत अचल अडोल निर्भय स्थिति चाहिए, क्यों, सारी धरती खाली हो जाएगी, जिनसे हमारा बहुत प्यार है वो भी जाएंगे, जो वस्तुएं हमने बहुत मेहनत करके बनाई है, जी जान लगाया है, वो रहेंगी जाएंगी जाएंगी। कितनी खराब बात है ना? बाबा के लिए तो बिल्कुल सहज सी है, महाकाल है, सबको ले जाने आया है, सब कुछ छुड़ा कर ले जाएगा। केवल छुड़ाएगा ही नहीं, उसे नष्ट भी कराएगा, क्योंकि उसकी जगह सोने के महल बनने हैं। माल ज्यादा ही मिलना है, कमी नहीं होगी, पर एक बार तो जब टूटेगा तो मुश्किल हो जाएगी ना। देखो अभी जरा सी धूल की आंधी चल रही है, यहाँ ऊपर भी बहुत चल रही थी, कैसा होता है। अभी अभी कपड़े पहन के बाहर निकलो, एक चक्कर लगा के आओ, सब धूल ढाल में हो गए, चेहरे भी धूल में हो गए हैं। और जब सारा संसार टूटेगा, बाबा कहा करते थे, बारह बारह कोस पर दिया जलेगा, बारह बारह कोस, 36 किलोमीटर पर, 40 किलोमीटर पर, 50 किलोमीटर पर कोई कोई घर बचेगा जिसमें दीपक जलेगा। इलेक्ट्रिसिटी तो होगी नहीं, दीपक जलेगा फिर से। तो सभी सोच लें और इस और भी तैयारी करें। इसलिए सबसे बड़ा पेपर विनाश काल में किसका होगा, कौन से विकार का? मोहो का। क्योंकि मनुष्य का न केवल मनुष्यों से मोह है, लेकिन उन वस्तुओं से भी बहुत है जो उसने मेहनत करके इकट्ठी की है। उसमें मेहनत तो लगी है ना, बहुत मेहनत लगी है। किसी ने 50 लाख रुपए कमाए हो जीवन भर और एक सुंदर मकान बनाया और वो टूट जाए, कैसा लगेगा उसे? कहा मेरी सारी जीवन की कमाई एक सेकंड में खत्म हो गई, मैंने ज्ञान भी छोड़ा, योग भी छोड़ा, भगवान को भी छोड़ा था इस मकान के पीछे और ये तो खत्म हो गया। लेकिन बाबा के बच्चों को बहुत सहज रहेगा। हम अपनी मेंटेलिटी को तैयार करें अभी से। हम सब एक होमवर्क ले लें अपने अपने लिए कि जो कुछ हमारे पास हो उसमें हम सुखी रहना सीख लें। ह्यूमन नेचर है ना, जैसे जैसे उसका सुख बढ़ता जाता है, साधन बढ़ते जाते हैं, उसकी अधीनता उसे होती जाती है। और उससे अगर कम मिलने लगे तो उसको बहुत मुश्किल लगती है। एक भूखा व्यक्ति सोचता है दो सूखी रोटी अचार से मिल जाए, बस मजा आ जाए आज। और जो बहुत अच्छा खाते हैं उन्हें एक सब्जी और रोटी मिल जाए तो कहेंगे, बाबा क्या कर दिया तुमने, ये रोटी भी हमें नहीं मिलती अच्छी, कितना अच्छा भोजन हम खाते थे। तैयार करेंगे अपने को जैसी परिस्थिति आए, आएंगी हम सब जानते हैं, भारत में बहुत ज्यादा आएंगी। नंबर किसी किसी का लग रहा है, लेकिन लगेगा तो भारत का भी बहुत ज्यादा, क्योंकि भारत में सारा माल तो धरती में यही है ना, सागर में है और धरती में है। तो भूकंप इतने ज्यादा होंगे कि वो सब ऊपर आएगा, नीचे ऊपर का माल, नीचे नीचे का ऊपर, सागर भी उछलेगा बहुत ज्यादा, सागर में जो धन संपदा है वो भी धरा पर आ जाएगी। हम अपने को तैयार करें अभी से। अब बहुत सुख सुविधाओं में सब रहते ही हैं, जैसा है उसमें संतुष्ट। सब सोचें, इस पर विचार करेंगे, अब से ही तैयारी करनी पड़ेगी। कोई ये ना सोचे जब होगा देखा जाएगा, तब देखा नहीं जाता, तब तो परेशानियां बढ़ जाती हैं, बहुत बहुत बढ़ जाती हैं। जापान से मुझे भी ईमेल आया, कहा हम लोगों से तो सकास भी नहीं दी जा रही है। बहने लिख रही हैं कि हमसे तो यहाँ सकास भी नहीं दी जा रही है। क्यों? जब विनाश होता है तो इतना सब कुछ निगेटिव हो जाता है कि मनोस्थिति दूसरी हो जाती है हर मनुष्य की। इसलिए जो कुछ करना होता है वो लंबा काल पहले से ही करना होता है। विनाश काल में कोई कुछ भी नहीं कर सकता। और क्या होता है मृत्यु के समय, मैं आपको एक बात कहूं, मृत्यु के समय जो लोग सोचते हैं ना, मृत्यु के समय बाबा को याद कर लेंगे, पता तो चल ही जाएगा कुछ ना कुछ, फिर बाबा को योग लगा लेंगे, हमारी अंतिम स्थिति अच्छी हो जाएगी। वैसे तो किसी को पता चलेगा नहीं, पर किसी किसी को पता चलता है। परंतु तो क्या होता है, जब मृत्यु बिल्कुल नजदीक आती है, समझो 15 मिनट में मृत्यु होने वाली है, तो मनुष्य का मन शांत होने लगता है। भाई ये मन, कॉन्शियस माइंड, जब मन शांत होने लगता है तो अंतर मन जागृत हो जाता है। पहले मन शांत होगा, बहुत अच्छा लगेगा मनुष्य को, चेहरा भी चमक जाएगा, और उसके कुछ ही समय बाद हो जाएगा सब कॉन्शियस माइंड एक्टिव, अंतर मन जग गया, और अंतर मन में लंबे समय का जो कुछ भरा हुआ है वो काम करने लगा, उसको रोक नहीं सकेगा कोई, क्योंकि मन शांत हो गया, मन की शक्ति बिल्कुल काम नहीं कर रही है, तो अंतर मन एक्टिव होते ही जो कुछ भरा हुआ है, बुरा सोचा है जीवन भर, वो बुरे ही विचार चालू हो जाएंगे। किसी विशेष जगह मोह रहा है, वो मोह चालू होके काम करने लगेगा, वो लाख कोशिश करेगा इसे हटाऊं, बाबा कहूं, नहीं हो पाएगा। इसलिए बाबा लंबे काल के पुरुषार्थ के लिए हमें प्रेरित करते हैं, अपने सबकॉन्शियस माइंड में, अपने अंतर मन में लंबा काल जो कुछ हम भर लेंगे वही अंत काल में सामने होगा, नहीं तो नहीं। कोई मदद नहीं कर सकता, पास बैठे वाले याद दिलाएंगे बाबा को याद करो, हूं तो करेंगे, लेकिन चलेगा वही जो लंबे काल से सबकॉन्शियस माइंड में भरा हुआ है। तो हम बाबा की इस मुरली से बहुत अच्छी अच्छी प्रेरणा लेते हैं, बाबा के रंग में तो हम रंग ही गए हैं। अब 3 स्वमान लेंगे बाबा के आने तक के हमारे अभ्यास। आज कौन सी तारीख हो गई, 19, 20 से, और हमारे पास 11 दिन हैं, फिर हम मिल सकेंगे एक बार तो, लेकिन तब तक एक हफ्ते के लिए मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, विजय रत्न हूँ, पूर्वज हूँ। 3 स्वमान को हम बहुत गुड फीलिंग में लाएंगे, केवल इन्हें याद नहीं करना है, इसको अपनी फीलिंग्स में लाना होता है। मैं विश्व कल्याणकारी पूर्वज हूँ, दोनों को जोड़ दें जरा, मेरा एक एक संकल्प विश्व का कल्याण करेगा, मेरी प्योरिटी विश्व का कल्याण करेगी, मेरी भावनाएं विश्व का कल्याण करेगी, मेरा योग बल विश्व का कल्याण करेगा, मुझे सबका कल्याण करना है, ये चिंतन भी बढ़ाना है। तो ये बात नशे में उतरती जाएगी, मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, बहुत सुख मिलेगा। ये स्वमान भी बहुत ही सुंदर है, बाबा पीछे हमें अच्छे अच्छे टाइटल देता आया है, दुख हरता सुख करता, ये तुम्हारा ही टाइटल है, जैसे बाबा है वैसे ही हम भी दुख हरता सुख करता है। इस स्वमान में रहने से हमारा दुख बढ़ेगा नहीं, खत्म होता जाएगा। मैं विजय रतन हूँ, इसको गहरी फीलिंग में लाना है, माया पर, विघ्नों पर, परिस्थितियों पर मेरी विजय निश्चित है, कल पहले मैंने विजय पाई है, इसलिए ये गायन है, मेरी यादगार में माला बनी हुई है। पिछले साल का बाबा का महावाक्य, तुम माला के ऐसे मन के हो जिनको स्मरण करके भक्त भी विघ्नों से मुक्त हो जाते हैं। तो तुम्हारे पास विघ्न कैसे आएंगे, अगर हम इस स्वमान में रहेंगे, मैं विजय रतन हूँ, माला का मणका हूँ, तो ये स्वमान हमें विघ्नों से भी मुक्त रखेगा। तो इन तीनों पर पूर्वज माना हम बड़े हैं, मैच्योर हो गए, बहुत छोटे नहीं, छोटे विचार नहीं, छोटी भावनाएं नहीं, बहुत बड़े। तीनों को गुड फीलिंग्स में लाना है। गुड फीलिंग्स में लाने के लिए हमें निस्वीकार करना होता है, मैं ये हूँ। तो इन तीनों को हम अच्छे अभ्यास में लाएंगे। और बाबा ने जो हमें होमवर्क दिया, टाइम फिक्स करो सकास देने का। वैसे जो शांतिवन वाले हैं उन सभी के लिए बहुत टाइमिंग फिक्स हैं। कौन कौन से? ट्रैफिक कंट्रोल 1 मिनट और 3 मिनट, 12-15-16 बार ये गीत बजते हैं। लक्ष्य बना लेंगे प्रकृति को सदो प्रधान बनाने के लिए वाइब्रेशंस देने हैं। जैसे गीत शुरू हो एक संकल्प करेंगे, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ, ऊपर से बाबा की किरणें पड़ने लगी और मुझसे चारों ओर फैलने लगी, आंखों से फैलने लगी, मस्तक से फैलने लगी, अंग अंग से, दसों दिशाओं में। 1 मिनट का ये अनुभव भी हमें भी बहुत सुख देगा। 3 मिनट के लिए भी हम ये संकल्प करेंगे तो लक्ष्य होने से हमारे पूरे 3 मिनट भी सफल हो जाएंगे। इसके अलावा 2 टाइमिंग और फिक्स करेंगे, 15-15 मिनट। बोलो, एक सवेरे एक शाम को, सबको करना है ये। इसलिए आपको बताना है कौन सा टाइमिंग अच्छा रहेगा, है? सवेरे 4:45 से 5 पॉसिबल या 4:30 से 4:45? हैं? दोनों रख देते हैं, 4:30 से 4:45 या 4:45 से 5, जिसको जो सुटेबल हो वही टाइम 15 मिनट सकास देनी है। एक तरीका ये अपनाएंगे। दूसरा तरीका, मैं सूक्ष्म लोक में हूँ, प्रैक्टिस करेंगे ऊपर से नीचे देखने की। धरती को देखें, ऊपर से नीचे देखेंगे और बाबा मेरे साथ खड़े हैं, बाप दादा, और यही तीनों स्वमान लेंगे और अनुभव करेंगे मेरे मस्तक से, दोनों नैनों से किरणें निकलकर नीचे धरती के गोले पर पड़ रही हैं, प्रकृति को भी मनुष्यों को भी बहुत अच्छा अनुभव देगी है सवेरे शाम। क्योंकि 15-15 मिनट है तो हम 3 विधि अपना लेते हैं, एक फरिश्ते के नीचे, एक सूक्ष्म वतन में, और तीसरी जो बाबा ने सिखाई है, मैं ग्लोब के ऊपर हूँ, परम धाम में सर्वशक्तिवान की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं, परम धाम से। पहले इसका अनुभव करेंगे, जैसे बाबा की शक्तियां मुझ में भर रही हैं, और फिर मुझ से ऐसे ही मैं माइट हाउस हो गया, आंखों से, भ्रकुटी से, अंग अंग से ये किरणें चारों ओर फैल रही हैं। साथ में संकल्प भी करेंगे, तीनों तरह के अभ्यास करते हुए, सभी आत्माओं के चित्त शांत हों, सभी के दुख समाप्त हो जाएं, सभी का जीवन तनाव मुक्त निर्विघ्न हो, प्रकृति सतो प्रधान हो। ये होगा हमारा सकास देने का बहुत सुंदर प्रोग्राम। पसंद है सबको? 2 टाइम शाम को 7:15 से 7:30, और जो घरों में रहती हैं माताएं वो भी इसको करेंगी, 7 बजे से भी कर सकते हैं, 7 से 7:15 या 7:15 से 7:30। सभी बहुत ध्यान देंगे इस पर, क्योंकि हर मुरली में ये बात आ रही है, इस बार आ रही है ना, हर मुरली में भक्तों की पुकार तुम्हें क्यों नहीं सुनती। अभी कहा थोड़ा सावधान हो जाओ, सावधान होकर बैठो तो वो आवाज सुनाई देगी तुम्हें। क्योंकि जितना हम स्थिर चित्त होंगे, जितना हमारा ब्रेन और बुद्धि क्लीन होगी, उतने वो सूक्ष्म वाइब्रेशन हमारे अंदर टच करते रहेंगे, फील होगा पुकार रहा है कोई हमें। जैसे पीछे मैंने उदाहरण दिया था ना विष्णु का, तो नीचे गज का पैर ग्रह ने पकड़ लिया, उसने याद किया भगवान को, फूल अर्पित कर दिया। अब फूल तो वहां कहाँ था सागर में, ये तो लोगों ने कहानी बनाई है वाला सागर में, उसको ग्रह फूल तोड़ने की और अर्पित करने की छुट्टी थोड़ा ही देता जब वो खींच रहा था। उन्होंने तो देखा हजारों साल तक युद्ध होता रहा, ये तो हमारी बात है कि माया से हम लड़ते रहे, पर दिखाया कि विष्णु का एकदम टच हुआ, भक्त पर आपदा आई है। वहीं से सुदर्शन चक्र छोड़ दिया, मार दिया मगर को। ऐसे शंकर को भी दिखाया है, कोई भक्त याद कर रहा तपस्या में बैठे, एकदम थ्रिलिंग हो गई, किसी भक्त पर आपदा आई। वहीं से हाथ ऐसे किया, यमस्तक से किरणें निकली, उसको पहुंची, समस्या खत्म हो गई। यही काम हमें करना, कभी हाथ से सकाश देनी है, हाथ से भी निकलेगी, कभी मस्तक से, दोनों नैनों से, व्यक्तिगत रूप पर भी। इसके अनुभव हम सब बढ़ाते चलेंगे और 7 दिन 8 दिन सभी बहुत अच्छा तत्परता के साथ इसमें तल्लीन हो जाएंगे। ओम शांति।